योएल का ग्रंथ और लाओदीकियाई सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 36
हलचल, जिसे जेम्स वाइट 22 अक्टूबर 4144 के पश्चात मिलराइटों के बिखराव के रूप में अभिहित करते हैं, के बीच विलियम मिलर ने 4147 में एक स्वप्न देखा और 2 वर्ष बाद उनका देहावसान हो गया।
यदि विलियम मिलर तीसरे संदेश का प्रकाश देख पाते तो बहुत सी बातें जो उसे अंधकारमय और रहस्यमय प्रतीत होती थीं, स्पष्ट कर दी जातीं। परंतु उसके भाइयों ने उसके प्रति इतना गहरा प्रेम को और रुचि प्रकट की कि उसे लगा कि वो उनसे अलग नहीं हो सकता। उसका हृदय सत्य की ओर झुकता और तब वो अपने भाइयों की ओर देखता। वे सत्य का विरोध करते। क्या वो उनसे अलग हो सकता था जिन्होंने यीशु के आगमन का प्रचार करते हुए उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे थे? वो सोचता था कि वे निश्चय ही उसे भटकने नहीं देंगे। परमेश्वर ने उसे शैतान की सामर्थ्य और मृत्यु के प्रभुत्व के अधीन पड़ने की अनुमति दी, और जो लोग उसे निरंतर सत्य से दूर खींच रहे थे उनसे उसे कब्र में छिपा दिया। मूसा ने, जब वो प्रतिज्ञा की हुई भूमि में प्रवेश करने ही वाला था, त्रुटि की। इसी प्रकार मैंने देखा कि विलियम मिलर ने, जब वो शीघ्र ही स्वर्गीय कनान में प्रवेश करने वाला था, ये त्रुटि की कि उसने अपने प्रभाव को सत्य के विरुद्ध जाने दिया। अन्य लोगों ने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया। इसके लिए उन्हीं को लेखा देना होगा। परंतु स्वर्गदूत परमेश्वर के इस दास की बहुमूल्य धूल पर निगरानी रखते हैं और वो अंतिम तुरही की ध्वनि पर बाहर आएगा।
एक दृढ़ अधिष्ठान। मैंने एक समूह देखा जो भली भांति सतर्क और अडिग खड़ा था, और जो उस समुदाय की स्थापित आस्था को विचलित करने वालों को तनिक भी समर्थन नहीं देता था। परमेश्वर ने उन्हें प्रसन्नता की दृष्टि से देखा। मुझे 3 पायदान दिखाए गए, पहला, दूसरा और तीसरा स्वर्गदूत संदेश। मेरे सहचर स्वर्गदूत ने कहा, हाय उस पर जो इन संदेशों के किसी पत्थर को हिलाए या किसी कील को भी हिला दे। इन संदेशों की सच्ची समझ परम महत्व की है। आत्माओं का भाग्य इस बात पर टिका है कि इन्हें किस प्रकार ग्रहण किया जाता है। मुझे फिर इन्हीं संदेशों के द्वारा ले जाया गया और मैंने देखा कि परमेश्वर की प्रजा ने अपना अनुभव कितनी भारी कीमत देकर अर्जित किया था। वो बहुत से दुख और भीषण संघर्ष के द्वारा प्राप्त हुआ था। परमेश्वर ने उन्हें चरण जर जरण अग्रसर किया, जब तक कि उसने उन्हें एक ठोस अचल मंच पर स्थापित न कर दिया। मैंने देखा कि कुछ व्यक्ति उस मंच के निकट आए और उसकी नींव की जाँच पड़ताल की। कुछ ने आनंद के साथ तुरंत उस पर चढ़कर खड़े हो गए। अन्य ने उसकी नींव में दोष निकालना प्रारंभ किया। वे चाहते थे कि उसमें कुछ सुधार किए जाएं, तब मंच अधिक सिद्ध हो जाएगा और लोग बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। कुछ लोग उसे परखने के लिए मंच से उतर पड़े और घोषित किया कि वो गलत रीति से डाला गया है। परंतु मैंने देखा कि लगभग उत्सव मंच पर दृढ़ खड़े रहे, और जिन्होंने उतर कर शिकायतें की थीं उन्हें अपनी शिकायतें छोड़ देने को समझाया, क्योंकि परमेश्वर ही प्रधान निर्माणकर्ता था और वे उसी के विरुद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन किया जिनके द्वारा वो उन्हें उस दृढ़ मंच तक ले आया था, और एकजुट होकर उन्होंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा की। इसका प्रभाव उनमें से कुछ पर पड़ा जो शिकायत करते हुए मंच से उतर गए थे, और वे विनम्र भाव से फिर उस पर चढ़ाए। अर्ली राइटिंग्स 258।
मिलर के अद्भुत कृत्य।
विलियम मिलर के अद्भुत कार्य से है उस दृढ़ नींव की स्थापना हुई जो सुदृढ़ अचल मंच थी। अचल मंच की नींव तथा मंच और नींव दोनों, जो 1839 में मिलर की मृत्यु के पश्चात प्रवर्तित किए गए थे पर हुआ पश्चातवर्ती आक्रमण, उनके स्वप्न में पहचाना गया है।
विलियम मिलर एड विंटवेडवाद के आधारों के प्रतीक है।
वो 1798 से 1863 तक के मिलरवादी इतिहास का भी प्रतीक है।
वो 1798 से 846 पर्यंत मिलराइट इतिहास का भी प्रतीक है।
वो 1798 से लेकर रविवार के कानून तक 3 स्वर्गदूतों के इतिहास का भी प्रतीक है।
उसका प्रतिनिधित्व 1798 से 1844 पर्यंत के 46 वर्षों द्वारा किया जाता है। वो 2500 पास तथा 2003 के संबंध में संख्या 230 द्वारा निरूपित है।
वो 7 काल देहीपाइन फिथसन द्वारा निरूपित है।
वो 2,03,000 द्वारा निरूपित है। मिलर के दो स्वप्नों का प्रतिरूप नबूकदनेस्सर के वे दो स्वप्न थे जो दानियल की पुस्तक के अध्याय 2 और अध्याय 4 में वर्णित है। 7,608 का कालखंड नबूकदनेस्सर से आरंभ होता है और 1863 में बेलशस्सर के साथ समाप्त होता है। 1769 से रविवार के कानून तक का काल नबूकदनेस्सर से आरंभ होता है और बेलशस्सर पर समाप्त होता है। मिलराइटों के इतिहास के प्रतीक के रूप में वो उन नीयों का प्रतीक है जो 2,520 की अल्फा खोज और 2,700 की ओमेगा खोज के बीच खोजे गए सत्यों का प्रतिनिधित्व करती है। विलियम मिलर के स्वप्न पर टिप्पणी करते हुए जेम्स व्हाइट ने ये पहचाना कि वो कुंजी मिलर की बाइबल अध्ययन की पद्धति थी। वो पद्धति ही दाऊद की कुंजी है जो मिलर के कंधे पर रखी गई, क्योंकि उन्होंने 2,700 वर्षों की भविष्यवाणी प्रस्तुत की जो 22 अक्टूबर 1844 को यशाया 22 दावा 22 की पूर्ति होने पर समाप्त हुई। 30 साल बाद जिन सत्यों पर लगी मुहर खुलनी आरंभ हुई वे वही सत्य हैं जिन्हें हबक्कूक की तालिकाएं नया 95 प्रस्तुतियों में पहले ही पहचाने जा चुके थे, और वे सत्य अब सत्य के एक नए ढांचे के भीतर स्थापित किए जा रहे हैं। जुलाई 2023 में बियाबान में पुकारने वाले की वाणी के आह्वान ने ये इंगित किया कि 18 जुलाई 2020 की घोषणा के विषय में जिन्हें पश्चाताप करना था उनके लिए रोना और विलाप आवश्यक ठहराए गए। जो बुद्धिमान कुवारियों में होने वाले थे उन्हें दानियल अध्याय 9 की प्रार्थना के अनुरूप पश्चाताप करना था, जो लैव्य व्यवस्था 26 में उन जनों की प्रार्थना है जो ये स्वीकार करते हैं कि वे तित्तर बित्तर कर दिए गए हैं। जब मिलर कहते हैं, जब मैं इस प्रकार अपनी महान हानि और उत्तरदायित्व के कारण रो रहा था और विलाप कर रहा था, तब मैंने परमेश्वर को स्मरण किया और आकुल होकर प्रार्थना की कि वो मुझे सहायता भेजे। तत्क्षण द्वार खुल गया और एक पुरुष कमरे में प्रवेश किया और उसी समय वहां उपस्थित सब लोग बाहर चले गए और उसके हाथ में धूल झाड़ने का ब्रश आया। उसने खिड़कियां खोल दी और कमरे की धूल मिट्टी तथा कूड़ा करकट झाड़कर बाहर निकालने लगा। जब उसने सहायता के लिए गंभीरता से प्रार्थना की तब जो द्वार खुला वो मिलर का हृदय था। लाओदिकिया के प्रति सच्चे साक्षी के रूप में यीशु प्रवेश चाहते हुए हृदयों के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। जब वो द्वार खुला तो एक पृथक्करण की प्रक्रिया आरंभ हुई। जब वो द्वार खुला तो खिड़कियां भी खुल गईं, और वे खिड़कियां स्वर्ग की खिड़कियां हैं। प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग की खिड़कियां खुल गईं, जब दुल्हन के अपने आप को तैयार कर लेने के तुरंत बाद प्रभु ने अपनी श्वेत अश्व सेना को उठाया। वही सेना हिहेजकेल की वो सेना है जो कठोर पूर्वी पवन के संदेश के प्रत्युत्तर में उठ खड़ी होती है। वही सेना विजयी कलीसिया है जो गेहूं और जंगली घास का पृथक्करण संपन्न हो जाने पर युद्धरत कलीसिया से विजयी कलीसिया में रूपांतरित हो जाती है। उस पृथक्करण को लाओदिकिया की अवस्था से फिलाडेल्फिया की अवस्था में परिवर्तन के रूप में भी निरूपित किया गया है। मिलर ने अपना हृदय खोला और सच्चे साक्षी को भीतर प्रवेश करने दिया। उसने गेहूं और जंगली घास को अलग किया और इस प्रकार अपनी श्वेत अश्व सेना को जीवित कर उठाया। 53 दिसंबर 2023 को लोगों के चले जाने के बाद धूल झाड़ने वाला व्यक्ति कक्ष में प्रविष्ट हुआ और त्रुटि का कूड़ा करकट हटाने का कार्य प्रारंभ किया। साथ ही हबक्कूक की तालिकाओं के पुराने सत्यों को सत्य के एक नए ढांचे में स्थापित करने लगा।
उद्धारकर्ता उन बातों को रद्द करने नहीं आए थे जो पितृपुरुषों और भविष्यद्वक्ताओं ने कही थी, क्योंकि उन्हीं प्रतिनिधि पुरुषों के द्वारा वे स्वयं बोले थे। परमेश्वर के वचन की सारी सच्चाइयां उसी से आईं, परंतु ये अमूल्य शक्तियों उन्हीं अज्ञाव बहनों के द्वारा गलत संदर्भों में रख दिए गए थे। उनके अनमोल प्रकाश को ब्रह्म की सेवा में लगा दिया गया था। परमेश्वर चाहता था कि उन्हें ब्रह्म के उन संदर्भों से निकालकर सत्य के ढांचे में फिर से स्थापित किया जाए। ये कार्य केवल एक दिव्य हाथ ही कर सकता था। ब्रह्म के साथ अपने संबंध के कारण सत्य परमेश्वर और मनुष्य के शत्रु के उद्देश्य की सेवा कर रहा था। मसीह उसे वहां रखने आए थे जहां वो परमेश्वर की महिमा करे और मानवता के उद्धार के लिए कार्य करे। द डिजायर ऑफ एजेस 287
224 गिव इन सिखाए गाय प्रथम सत्यों में से एक
18 जुलाई 2019 की निराशा का स्पष्टीकरण था। रेखा पर रेखा ये पहचाना गया कि प्रत्येक सुधार रेखा की पहली निराशा ने 10 कुंफारियों के दृष्टांत में 18 जुलाई 2019 को एक प्राथमिक मार्ग चिन्ह के रूप में चिह्नित किया। निराशा का विषय पवित्र स्थान के सत्य को उद्घाटित करने की कुंजी बन गया, जबकि 18 वचोलित्स की महान निराशा में पवित्र स्थान वही कुंजी था जिसने उस निराशा को उद्घाटित किया। धूल झाड़ने वाला पुरुष, जो यहूदा के गोत्र का सिंह भी है, ने 2023 में मध्यरात्रि की पुकार के संदेश की मुहर खोलना प्रारंभ किया। हम अब मिलर के स्वप्न के उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां वो मेज पर बड़ी पेटिका रख रहा है और उन सत्यों को उसमें डाल रहा है जो सूर्य से 10 गुना अधिक चमकने के लिए नियत है। उन्हीं रत्नों में से एक भविष्यवाणी वृत्तांत में उसकी पहचान का प्रकाशन है। जब भविष्यवाणी की मुहर खोली जाती है, तब वो यहूदा के गोत्र का सिंह होता है, जो पुरानी सच्चाइयों को लेकर उन्हें सत्य के 3 चरणों के एक नए ढांचे में स्थापित करता है। वो ढांचा मसीही, जो अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम है, के द्वारा एक सूत्र में बंधा रहता है। परमेश्वर के वचन के रूप में उन्होंने अपने वचन के प्रत्येक तत्व का समन्वय किया। पालमुनि के रूप में उन्होंने गणित के प्रत्येक पहलू का विन्यास किया। जब पत्रस तीसरे पहर कैसरिया फिलिपी में होता है, वो स्वयं को पलमोनी के रूप में प्रकट करता है और भविष्यवाणी फ्रैक्टल पर विशेष बल देता है। भविष्यवाणी के प्रभु के रूप में मसीह के अंतिम प्रकाशनों में से एक ये है कि पत्रस द्वारा मत्ती 16:18 में प्रदर्शित भविष्यवाणी फ्रैक्टल पर बल दिया गया है, जो 5.71 का प्रतीक है, जिसे प्राकृतिक जगत में स्वर्ण अनुपात कहा जाता है, किंतु पलमोनी द्वारा इसे भविष्यवाणी फ्रैक्टल कहा जाता है। 3 चला 30 से थरथरवा पवित्र सप्ताह के भीतर स्थित भविष्यवाणी गत फ्रैक्टलों की पहचान हमने अभी केवल आरंभ की है। योएल की पुस्तक की ओर अग्रसर होते हुए वहां पुनः लौटने से पहले मिलर के स्वप्न के हमारे विवेचन में भविष्यवाणीगत फ्रैक्टलों पर विशेष बल को जोड़ा जाना आवश्यक था। मिलर का लोगों को आओ और देखो कहकर बुलाना और मसीह का मिट्टी झाड़ने वाले व्यक्ति के रूप में मिलर को आओ और देखो कहकर बुलाना, इन दोनों को समेटने वाला काल 1758 से लेकर रविवार के कानून तक है, परंतु उसी समग्र इतिहास के भीतर 1758 से 1330 सावतनन तक का एक फ्रैक्टल निहित है। उसमें 9-11 से रविवार के कानून तक का एक और फ्रैक्टल है और 2023 से रविवार के कानून तक का एक और। कोलाहल के बीच जब मिलर ने अपनी आंखें बंद की, तो उसने 1839 के उस इतिहास का प्रतिनिधित्व किया जब प्रभु कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु वो प्रयत्न निष्फल रहा। वह 2023 में पुनरुत्थित हुआ क्योंकि वो एलिया है जिसका वध मूसा के साथ सड़क पर किया गया था। उसकी मृत्यु 1839 में हुई और फिर 18 जुलाई 2020 को वो पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ। उन्हें 1855 में एक स्वप्न प्रदान किया गया। तब प्रभु ने दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाया और 1850 का चार्ट प्रकाशित किया। जब 1,44,000 के इतिहास में प्रभु दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाते हैं, तब मिलर का पुनरुत्थान होता है। इज़राइल और यहूदा दोनों के तितर बितर होने का प्रारंभ बिंदु यशायाह में प्रतिपादित है।
क्योंकि सीरिया का सिर दमिश्क है और दमिश्क का सिर रजीन है, और 65 वर्ष के भीतर एप्रम ऐसा तोड़ दिया जाएगा कि वो प्रजा पजा ना रहेगा, और एप्रम का सिर सामरिया है और सामरिया का सिर रमल्याह का पुत्र है। यदि तुम विश्वास ना करोगे तो निश्चय ही स्थिर नहीं रहोगे। यशाया 7:8-9।
ये भविष्यवाणी 47वीं दिन 19वीं दिन ईसा पूर्व में दी गई और 19 वर्ष बाद 730 ईसा पूर्व में असीरियों ने इसराइल को तितर बितर कर दिया और फिर 46 वर्ष बाद यहूदा को बाबुल ने तितर बितर कर दिया। ये तीनों दिनांक पहले 19 वर्षों की अवधि और उसके पश्चात 46 वर्षों की अवधि कहता है, जब वे दोनों भविष्यवाणियां क्रमशः 1998 और 1844 में समाप्त हुई, तब 47वीं दिन ईसा पूर्व से 730 ईसा पूर्व तक आरंभ की 19 वर्षीय अवधि अल्फा 19 वर्ष थी, जो 1844 से 1863 तक के ओमेगा 19 वर्षों का प्रतिनिधित्व करती थी। ओमेगा के 19 वर्षीय काल में 5 वर्ष बीत जाने पर मिलर की मृत्यु हुई और 7 वर्ष बाद हायरम एडसन के 7 टाइम्स पर लेख प्रकाशित हुए। 7 वर्ष बाद 7 टाइम्स को अस्वीकार कर दिया गया। 1856 में वो मुहर बंदी होनी थी जो 1863 के रविवार कानून से पहले होती, परंतु ऐसा होना न था। तीसरे स्वर्गदूत का आगमन 1874, 1838 और 9-11 के समय हुआ। बहन व्हाइट ने इंगित किया कि जब न्यूयॉर्क नगर के विशाल भवन ढह जाएंगे तब प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय के पहले 3 पदों की पूर्ति होगी।
इन बातों के बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके पास बड़ा अधिकार था और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो गई और उसने बड़े बल के साथ ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, बाबुल महान गिर पड़ा, गिर पड़ा, और दुष्टात्माओं का निवास स्थान हो गया है और हर एक अशुद्ध आत्मा का ठिकाना और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का पिंजरा, क्योंकि सब जातियों ने उसके व्यभिचार के क्रोध की दाख मधु पी है और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसकी विलासिता की प्रचुरता से धनी हो गए हैं। और मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना जो कहता था, हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ कि उसके पापों में सहभागी न बनो और उसकी विपत्तियों में से तुम्हें कुछ न मिले, क्योंकि उसके पाप आकाश तक पहुंच गए हैं और परमेश्वर ने उसकी अधर्मताओं को स्मरण किया है। जैसा उसने तुमको प्रतिफल दिया वैसा ही तुम भी उसे प्रतिफल दो और उसके कर्मों के अनुसार उसके लिए दूना दो। जिस प्याले को उसने भरा है उसी में उसके लिए दूना भरो। जितना उसने अपने को महिमा दी और विलासिता में रही उतना ही उसे यातना और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी बैठी हूं, मैं विधवा नहीं और मुझे शोक न होगा। इस कारण उसकी विपत्तियां एक ही दिन में आएंगी, मृत्यु और विलाप और अकाल, और वो आग से पूरी रीति से जला दी जाएगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो उसका न्याय करता है सामर्थी है। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया और विलासिता की, जब उसकी जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए विलाप और शोक करेंगे और उसकी यातना के भय से दूर खड़े होकर कहेंगे, हाय हाय वो महान नगर बाबुल, वो सामर्थी नगर, क्योंकि एक ही घड़ी में तेरा न्याय आ पहुंचा। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका बलान नहीं खरीदता, सोने और चांदी का और बहुमूल्य पत्थरों और मोतियों का और मलमल का और बैंगनी और रेशम और सुर्ख वस्त्रों का और हर प्रकार की थाइन लकड़ी का और हाथी दांत के हर प्रकार के पात्रों का और बहुमूल्यतम लकड़ी के हर प्रकार के पात्रों का तथा पीतल, लोहे और संगमरमर के पात्रों का और दालचीनी और सुगंध द्रव्य और मलहम और लोबान का और दाख मधु और तेल और मैदा और गेहूं का और पशुओं और भेड़ों और घोड़ों और रथों का और दासों का और मनुष्यों के प्राणों का और जिन फलों की तेरी आत्मा लालसा करती थी वे तुझसे दूर हो गए हैं और जो सब वस्तुएं स्वादिष्ट और मनोहर थीं वे तुझसे दूर हो गई हैं और तू उन्हें फिर कभी न पाएगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उससे धनी बने थे उसकी यातना के भय से दूर खड़े होकर रोते और विलाप करते हुए कहेंगे, हाय हाय वो महान नगर जो मलमल और बैंगनी और सुर्ख वस्त्र पहने हुए थी और सोने और बहुमूल्य पत्थरों और मोतियों से सजी हुई थी, क्योंकि एक ही घड़ी में ऐसी बड़ी दौलत नाश हो गई और हर जहाज का प्रधान और जहाजों की सारी मंडली और नाविक और जितने समुद्र से व्यापार करते हैं दूर खड़े हो गए और जब उन्होंने उसके जलने का धुआं देखा तो चिल्लाकर कहा, इस महान नगर के समान कौन सा नगर है। और उन्होंने अपने सिरों पर धूल डाली और रोते व विलाप करते हुए चिल्लाकर कहा, हाय हाय वो महान नगर जिसमें उसकी वैभवता के कारण समुद्र में जहाज रखने वाले सब लोग धनी बन गए थे, क्योंकि एक ही घड़ी में वो उजाड़ कर दी गई। हे स्वर्ग और हे पवित्र प्रेरितों और भविष्यद वक्ताओं, उसके ऊपर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारा बदला उसी से लिया है। तब एक पराक्रमी स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पाट के समान एक पत्थर उठाकर उसे समुद्र में फेंक दिया और कहा, इसी प्रकार बलपूर्वक वो महान नगर बाबुल पटक कर गिराया जाएगा और वो फिर कभी बिल्कुल न मिलेगा। और तेरे भीतर वीणा वादकों, संगीतकारों, बांसुरी वादकों और तुरही बजाने वालों का स्वर फिर कभी न सुना जाएगा। और कोई कारीगर, वह चाहे किसी कला का हो, तुझ में फिर कभी न पाया जाएगा। और चक्की की ध्वनि तुझ में फिर कभी न सुनी जाएगी, और दीप का प्रकाश तुझ में फिर कभी न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का स्वर तुझ में फिर कभी न सुना जाएगा। क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के बड़े लोग थे, क्योंकि तेरी तोना विद्या से सब जातियां भरमाई गईं। और उसके भीतर भविष्यद वक्ताओं और पवित्र जनों का और पृथ्वी पर जितनों का वध किया गया, उनका सबका रक्त पाया गया।
पद एक। और इन बातों के बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसके पास महान सामर्थ्य था, और उसकी महिमा से पृथ्वी आलोकित हो गई। पद दो। और उसने ऊंचे और प्रबल स्वर में पुकार कर कहा, महान बाबुल गिर पड़ा है, गिर पड़ा है, और वो दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान बन गया है, और हर एक अशुद्ध आत्मा का कारागार, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का पिंजरा। पद तृतीय। क्योंकि सब जातियों ने उसके व्यभिचार के क्रोध का दाखमधु पिया है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके भोग विलास की बहुतायत से धनवान हो गए हैं। वो शक्तिशाली प्रथम स्वर्गदूत अपने हाथ में एक संदेश लिए उतर आया, और यूहन्ना को ये आज्ञा दी गई कि वो जाकर उस छोटी पुस्तिका को ले और उसे खा ले। वो प्रथम स्वर्गदूत वही कार्य करता है जो प्रकाशित वाक्य 18 का स्वर्गदूत करता है, जो अपनी महिमा से पृथ्वी को आलोकित करता है। ये इसलिए है कि प्रथम स्वर्गदूत अल्फा है और तृतीय स्वर्गदूत ओमेगा है, और आरंभ सदैव अंत का निरूपण करता है।
यीशु ने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को ये आज्ञा दी कि वो पृथ्वी पर उतरकर पृथ्वी के निवासियों को चेतावनी दे कि वे उसके दूसरे आगमन की तैयारी करें। जैसे ही स्वर्गदूत स्वर्ग में यीशु की उपस्थिति से निकला, एक अत्यंत तेजस्वी और महिमामय प्रकाश उसके आगे आगे चला। मुझे बताया गया कि उसका मिशन अपनी महिमा से पृथ्वी को आलोकित करना और मनुष्यों को परमेश्वर के आने वाले क्रोध की चेतावनी देना था। प्रारंभिक लेखन 285।
प्रथम स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य 18 का प्रथम पद है। और इन बातों के पश्चात मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास महान सामर्थ्य था, और पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित थी। दूसरा स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 का दूसरा पद है। और उसने बड़े सामर्थ्य के साथ प्रबल स्वर में पुकार कर कहा कि महान बाबुल गिर पड़ी है, गिर पड़ी है, और दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान, हर एक अशुद्ध आत्मा का कारागार, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का पिंजरा बन गई है। तीसरा स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय का तीसरा पद है। क्योंकि सब जातियों ने उसके व्यभिचार के क्रोध की दाख मधु करकी पी है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके विलास की प्रचुरता से धनी हो गए हैं। रविवार के कानून के समय सभी राजा उस वेश्या के साथ व्यभिचार करते हैं, जैसा कि तीसरी आयत में पूर्व चित्रित है। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश ये है कि बाबुल गिर पड़ा है, और वही दूसरी आयत है। पहले स्वर्गदूत का उद्देश्य अपनी महिमा से पृथ्वी को आलोकित करना था, और वही पहली आयत है। पहली आयत नौथ ग्राबिन, दूसरी आयत वो पृथक्करण की प्रक्रिया है जो नौथ ग्राबिन से संपूर्ण मानव जाति में चल रही है, और तीसरी आयत रविवार का कानून है। इसी कारण नौथ ग्राबिन तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है, और रविवार का कानून भी तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है। पहली तीन आयतों में जैसा निरूपित है, नौथ ग्राबिन आने वाले रविवार के कानून की चेतावनी है, और चौथी आयत की दूसरी वाणी रविवार का कानून है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की पहली वाणी आने वाले रविवार के कानून की चेतावनी है, और वो चेतावनी रविवार के कानून के समय सजीव वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है। नौ एवेलन से लेकर रविवार के कानून तक का काल मिलर के स्वप्न में आओ और देखो के अल्फा से आओ और देखो के ओमेगा तक के काल द्वारा पूर्व रूप में चित्रित है। नौ एवेलन और रविवार के कानून के बीच रत्न कक्ष के मध्य में स्थित मिलर की मेज पर रखे जाते हैं, बिखेर दिए जाते हैं और दबा दिए जाते हैं, तथा तत्पश्चात धूल झाड़ने वाले मनुष्य द्वारा पुनर्स्थापित किए जाते हैं। 1840 में लघु पुस्तक के साथ जो स्वर्गदूत अवतरित हुआ वो प्रथम और अल्फा स्वर्गदूत था, जो नौ एवेलन पर अवतरित हुए स्वर्गदूत का प्रतिनिधित्व करता था। उस स्वर्गदूत की पहचान अध्याय 10 में की गई है, जब यूहन्ना से कहा जाता है कि वो पुस्तक मीठी होगी परंतु कड़वी हो जाएगी।
यूहन्ना पहले स्वर्गदूत के उस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा था जिसका प्रतिनिधित्व मिलेराइटो ने किया, और वो 144,000 के आंदोलन का भी चित्रण कर रहा था। सबसे पहले और प्रमुख रूप से उसने अंतिम दिनों का प्रतिनिधित्व किया, जैसा कि भविष्यद्वक्ता सदैव करते हैं। इसी कारण उसे पूर्व में ही सूचित किया गया कि पुस्तक पहले मीठी होगी और फिर कड़वी। मिलेराइटों को ये बात पूर्व से जनौत नहीं थी, परंतु 144,000 के लिए इसे जानना अनिवार्य है।
पहले स्वर्गदूत के संदेशवाहक के रूप में मिलर छोटी पुस्तक को खाने वाले का प्रमुख प्रतीक है। एक अनाज पीसने वाले के रूप में उसे गेहूं को भूसी से अलग करना था, फिर अनाज को पीसकर आटा बनाना और वो रोटी तैयार करना जो खाई जानी थी। उसने वो रोटी अपने कक्ष के मध्य में रखकर और जो कोई चाहे उन्हें आओ और देखो कहकर बांटी। परंतु उस व्यक्ति के प्रतीक के रूप में जिसने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तक ली, मिलर यूहन्ना के समान पहले स्वर्गदूत के आरंभिक दिनों की अपेक्षा वो तीसरे यशवर्धित के उत्तरकाल को अधिक संबोधित कर रहा है। अपने स्वप्न में वो ये सूचित करते हुए आरंभ करता है कि उसे अपना संदेश एक अदृश्य हाथ के द्वारा मिला। प्रकाशित वाक्य 10 में पहला स्वर्गदूत अपने हाथ में एक छोटी पुस्तक रखता है, परंतु प्रकाशित वाक्य 18 का स्वर्गदूत, जो 1840 के अल्फा का ओमेगा है, उसके हाथ में कोई पुस्तक प्रदर्शित नहीं है, और वही वो पुस्तक है जो मिलर को मिली, एक अदृश्य हाथ से मिली पुस्तक। मिलर का आओ और देखो 9:11 है, और धूल झाड़ने वाला ब्रश धारण किए हुए पुरुष का आओ और देखो रविवार का कानून है। अल्फा और ओमेगा, आओ और देखो के बीच दूसरे स्वर्गदूत का संदेश है, क्योंकि अल्फा 9:11 है, जो अध्याय 18 का पद 1 है, और पद 2 दूसरा स्वर्गदूत है जो पद 3 पर समाप्त होता है, जो रविवार का विधान, और ओमेगा आओ और देखो है। मिलर के स्वप्न में दूसरा स्वर्गदूत और बाबुल का पतन स्कैटर शब्द के 7 बार प्रयोग द्वारा निरूपित है, जबकि समग्र कथानक ये दर्शाता है कि सत्य त्रुटि से पराजित हो रहा है। पहला और तीसरा स्वर्गदूत क्रमशः 11 अगस्त 1840 और 9 अगस्त को उस संदेश के साथ उतरे जिसे ग्रहण कर खाया जाना चाहिए। ये दोनों तिथियां प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय के प्रथम पद के अनुरूप हैं। आधारभूत सत्यमय 1842 में प्रकाशित किए गए और 1843 का पायनियर चार्ट हबक्कूक की 2 तालिकाओं का अल्फा था। 2012 में हबक्कूक की तालिकाएं प्रकाशित की गईं, जो मई 1842 के अनुरूप थी। मिलरवादियों ने 19 अप्रैल 1844 को अपनी पहली निराशा का अनुभव किया, जो 18 जुलाई 2020 का पूर्व रूप ठहरता है। उसी समय दूसरा स्वर्गदूत आ पहुंचा और उसका आगमन प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के पद 2 के साथ संरेखित था। उस निराशा ने पहले स्वर्गदूत के अंत को चिह्नित किया। वही दूसरा स्वर्गदूत आया और कुमारियों के दृष्टांत में विलंब का समय आरंभ हुआ। पहले स्वर्गदूत का इतिहास दूसरे के इतिहास के समानांतर चल रहा है, और जब इसे इस प्रकार लागू किया जाता है तो दूसरे स्वर्गदूत का आगमन 1840 तथा पद नहीं 11 में पहले स्वर्गदूत के आगमन के साथ संरेखित होता है। प्रतीक्षा काल 9 बजे पेरा पहुंचा, जिसका प्रतिरूप 19 अप्रैल 1844 था। 9 बजे पर इस्लाम की 4 पवनें मुक्त कर दी गईं और फिर रोक कर रखी गईं। यूहन्ना की वे 4 पवनें यशाया की प्रचंड पवने हैं और भविष्यवाणी की पूर्वी पवन ने, और मुहर लगाने वाला स्वर्गदूत पूर्व से उदय होता है। जब वो उदय होता है तो वो बहन वाइट के अनुसार 4 बार इस प्रकार पुकारता है, थामे रखो, थामे रखो, थामे रखो, थामे रखो, थामे रखो। दूसरे स्वर्गदूत के आगमन से आरंभ होने वाला प्रतीक्षा काल इस प्रकार दर्शाया गया है कि 144,000 मुहर बंद किए जाने तक 4 पवनें रोक कर रखी जाती हैं। प्रथम निराशा के पश्चात सैमुअल स्नो को आधी रात की पुकार के संदेश का संकलन करने के लिए प्रेरित किया गया, और इस प्रकार वो जुलाई 2023 में जंगल में पुकारने वाले के स्वर का प्रतिरूप सिद्ध हुआ। एक्सेटर शिविर सभा में तेल की कसौटी के आधार पर कुवारियों का जो पृथक्करण हुआ उसने वाचा के दूत के कार्य के अनुरूप मिलरराइटों को शोधित और पवित्र किया। एक्सेटर शिविर सभा ने मुद्रांकन का प्रतिनिधित्व किया क्योंकि तत्पश्चात कार्य ज्वारीय लहर की भांति या एक पराक्रमी सेना के समान आगे बढ़ा, जब तक कि 22 अक्टूबर 1844 को तीसरा स्वर्गदूत आ पहुंचा। उस इतिहास की कुंजी पृथक्करण है। जब दूसरे स्वर्गदूत का आगमन होता है वो अलग करने का कार्य करता है, जैसा कि उसने प्रथम निराशा के समय किया था और वो 22 अक्टूबर के विभाजन पर समाप्त हुआ। दोनों विभाजनों के मध्य में दूसरे स्वर्गदूत का संदेश प्रचारित किया गया। दूसरे स्वर्गदूत का कार्य एक क्रमिक विभाजन है जो तेल की अंतिम परीक्षा तक आगे बढ़ता है। तेल की अंतिम परीक्षा तीसरे स्वर्गदूत के लिटमस परीक्षण की ओर ले जाती है। वो लिटमस परीक्षण यीशु के लिए क्रूस था और गतसमनी का उद्यान अर्थात तेल कोल्हू का उद्यान क्रूस के उस लिटमस परीक्षण से पहले आया और कन्याओं के तेल की परीक्षा 1844 के बंद द्वार से पहले हुई। प्राचीन इसराइल के लिए अंतिम परीक्षा जिसके पश्चात न्याय हुआ 10वीं परीक्षा थी। तब उन्हें मरुभूमि में मरने के लिए ठहराया गया। चाहे स्थान कादेश हो, गतसमनी हो या एक्सेटर, न्याय से पूर्व होने वाली वो अंतिम परीक्षा जिसमें दो वर्ग अलग किए जाते हैं 2023 के पश्चात की एक अंतिम परीक्षा की पहचान कराती है जो रविवार कानून के बंद द्वार न्याय से पहले आती है। वो अंतिम परीक्षा मुद्रांकन है। अंतिम तैयारापड़ का आखिरी परीक्षा के तैयार तक परीक्षा का संकेत करती है। सन 2020 में जब यहूदा के गोत्र के सिंह ने अपने हाथ को हटाकर उस दर्शन की मुहर खोल दी जो विलंबित होना था, तब विलंब का समय समाप्त हो गया। तत्पश्चात सैमुएल स्नो का कार्य आरंभ हुआ। यदि हम प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों की अवधियों को परस्पर समानांतर रखें तो उनसे एक ऐसे स्वर्गदूत के अवतरण की पहचान होती है जो एक संदेश लेकर अवतरित होता है। यह संदेश को लो और खाओ की आज्ञा पर उनकी प्रतिक्रिया के द्वारा परमेश्वर की प्रजा की परीक्षा लेता है। तत्पश्चात वह मौलिक संदेश लोक समक्ष रखा जाता है जब तक कि वो मौलिक संदेश विफल न हो जाए। तब तृतीय स्वर्गदूत आता है। तृतीय स्वर्गदूत की अवधि वे 19 वर्ष है जो ईसा पूर्व 722 से 733 तक के ओमेगा 19 वर्ष थे। एक वन फैंसर 137 तक की अवधि और ईसा पूर्व 745 से 723 तक की अवधि परस्पर समानांतर है और प्रथम तथा द्वितीय स्वर्गदूतों की अवधियों के भी समानांतर है। भविष्य सूचक इतिहास की वे चार रेखाएं 9EF से लेकर रविवार पालन के कानून तक की अवधि के साथ संरेखित होती हैं। वे पांचों रेखाएं मिलर के अल्फा आओ और देखो और मसीह के ओमेगा आओ और देखो का इतिहास है।
4x7
उचित रूप से समझे जाने पर लैव व्यवस्था 26:7 का 4 बार उल्लेख करती है और 7x मिलर तथा उनके संदेश का एक प्रतीक है। 1842 में 7x के विषय में मिलर की समझ 1843 के चार्ट पर अंकित की गई, जिसके विषय में बहन व्हाइट कहती हैं, ये प्रभु के हाथ से निर्देशित था और इसे बदला नहीं जाना चाहिए। 7 वर्ष बाद 1845 में मिलर का निधन हो गया और 7 वर्ष बाद 7x के संदेश को हायरम एडसन ने अभिलेख में दर्ज किया और 7 वर्ष बाद उसे अस्वीकार कर दिया गया। सन 1882 में हबक्कूक की पहली तालिका प्रकाशित हुई। 1846 में 1850 के चार्ट पर 7 समय के ओमेगा संदेशवाहक मोपाई की उपेक्षा की जाती है। 1863 में हबक्कूक की 2 पट्टिकाओं को अस्वीकार कर दिया गया और 1860-13 का चार्ट प्रकाशित किया गया। प्रारंभ में एक दिव्य आरेख प्रकाशित किया गया है और अंत में एक मानवीय आरेख प्रकाशित किया गया है। मध्य में 2 दूत चिन्हित किए गए हैं क्योंकि द्वितीय संदेश सदैव द्विगुणित रहता है।
प्रथम स्वर्गदूत
सन 1882 में हबक्कूक की पहली तालिका प्रकाशित हुई।
द्वितीय स्वर्गदूत
1849 में 1843 के चार्ट का वो वृद्ध संदेशवाहक निधन हो जाता है। 1856 में 1850 के चार्ट का नया दूत उपेक्षित किया जाता है,
तृतीय स्वर्गदूत।
4563 में संदेश को अस्वीकार कर दिया गया और 4563 का चार्ट प्रकाशित किया गया। ये 21 वर्षीय कालखंड सात समय के चार प्रतीकों का प्रतिनिधि है और इसमें प्रत्येक के बीच सात सात वर्षों का समान अंतराल है। अल्फा संदेश प्रकाशित किया जाता है 142, अल्फा संदेश वाहक का निधन होता है 142-79, ओमेगा संदेश वाहक की उपेक्षा की जाती है 155 और ओमेगा संदेश अस्वीकार किया जाता है 185। ये क्रम 2012, 18 जुलाई 2020, 2023 तथा शीघ्र आने वाले रविवार के कानून का प्रतिरूप है। 185-19 में मिलर की मृत्यु 18 जुलाई 2020 के साथ मेल खाती है। संदेशवाहक और संदेश दोनों का 2023 में पुनरुत्थान हुआ। अब ओमेगा संदेश की मुहर खोली जा रही है और इसके बाद 185-63 का रविवार का कानून आता है। मिलरवादी आंदोलन में संदेश स्थापित किया गया और तत्पश्चात दूत की मृत्यु हो गई। समांतर आंदोलन में संदेश स्थापित किया गया और फिर संदेश मृत्यु हो गया। संदेश का 1856 और 2023 में पुनरुत्थान हुआ। 1863 का चिन्ह धर्म त्याग है और उसके समकक्ष रविवार के कानून के समय का चिन्ह विजय है। 1863 के धर्म त्याग और रविवार के कानून के समय उसके समकक्ष की विजय से पूर्व 1856 के सात बार के शिरोशिला स्वरूप ओमेगा प्रकाश की मुहर का उद्घाटन प्रतिपादित किया जा रहा है, जैसा कि 2023 से होता आ रहा है। हम अगले लेख में जारी रखेंगे।
विलियम मिलर 1782-1849।
विलियम इच्छा और षडस्त्राण, दृढ़ प्रतिज्ञा रक्षक, निश्चयी संरक्षक अथवा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला योद्धा। मिलर, वो व्यक्ति जो मिल का संचालन करता है, विशेषतः ऐसी मिल का जो अन्न को पीसकर आटा बनाती है।
दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न योद्धा,
एक धर्मनिष्ठ निष्कपट हृदय किसान जिसके मन में पवित्र शास्त्रों की दैवीय अधिकारिता के प्रति संदेह उत्पन्न कर दिया गया था, तथापि जो सत्य को जानने की सच्ची इच्छा रखता था, वही व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने विशेष रूप से इस हेतु चुना कि वो मसीह के दूसरे आगमन की घोषणा का नेतृत्व करे। अन्य अनेक सुधारकों की भांति विलियम मिलर ने अपने प्रारंभिक जीवन में दरिद्रता से संघर्ष किया और इस प्रकार उसने उद्यम तथा आत्मत्याग के महान पाठ सीखे। जिस परिवार से वो उत्पन्न हुआ था उसके सदस्य स्वाधीन स्वतंत्र प्रिय मनोभाव, सहन शक्ति और उत्कट देशभक्ति से विशिष्ट थे। ये गुण उसके अपने चरित्र में भी प्रमुख थे। उसके पिता क्रांति की सेना में एक कप्तान थे और उस उथल पुथल भरे काल के संघर्षों और दुखों में जो बलिदान उन्होंने किए, उन्हीं में मिलर के प्रारंभिक जीवन की तंग परिस्थितियों का स्रोत खोजा जा सकता है। उसका शारीरिक गठन सुदृढ़ था और बचपन में भी उसने सामान्य से अधिक बौद्धिक सामर्थ्य के प्रमाण दिए। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ये और अधिक स्पष्ट होता गया। उसका मस्तिष्क सक्रिय और सुविकसित था और उसमें ज्ञान की तीव्र पिपासा थी। यद्यपि उसे महाविद्यालयीय शिक्षा के लाभ प्राप्त नहीं हुए, तथापि अध्ययन प्रेम तथा सावधानीपूर्वक चिंतन और सूक्ष्म समालोचना की आदत ने उसे सुदृढ़ निर्णय शक्ति और व्यापक दृष्टि वाला पुरुष बना दिया। उसका नैतिक चरित्र निष्कलंक था और उसकी प्रतिष्ठा ईर्षणीय। सत्यनिष्ठा, मितव्ययिता और परोपकारिता के लिए वो सामान्यतः आदृत था। ऊर्जा और लगन के बल पर उसने प्रारंभिक आयु में ही यथेष्ट संपत्ति अर्जित कर ली, तथापि उसके अध्ययन की आदतें यथावत बनी रहीं। उसने नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार के अनेक पद सम्मानपूर्वक संभाले और धन तथा मान सम्मान के मार उसके लिए व्यापक रूप से खुले हुए प्रतीत होते थे। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 317। परमेश्वर का ज्ञान मानसिक परिश्रम के बिना और ये बुद्धि मांगे बिना कि आप सत्य के शुद्ध अन्न से उस भूसी को अलग कर सकें जिसके द्वारा मनुष्यों और शैतान ने सत्य के सिद्धांतों को गलत रूप में प्रस्तुत किया है, प्राप्त नहीं किया जा सकता। शैतान और उसके मानव सहयोगियों के गठबंधन ने त्रुटि की भूसी को सत्य के गेहूं के साथ मिला देने का प्रयत्न किया है। हमें परिश्रम पूर्वक छिपे हुए खजाने की खोज करनी चाहिए और स्वर्ग से बुद्धि मांगनी चाहिए ताकि हम मानवीय गढ़ंतों को दैवीय आज्ञाओं से पृथक कर सकें। पवित्र आत्मा उन महान और बहुमूल्य सत्यों के खोजी की सहायता करेगा जो उद्धार की योजना से संबंधित हैं। मैं सबके मन में ये बात दृढ़तापूर्वक बिठाना चाहता हूँ कि शास्त्रों का सरसरी पठन पर्याप्त नहीं है, हमें खोज करनी ही होगी, और इसका अर्थ है कि वचन में निहित हर बात को आचरण में लाना। जैसे खनिक सोने की शिराओं को खोजने के लिए उत्सुकतापूर्वक पृथ्वी का अन्वेषण करता है, वैसे ही आपको परमेश्वर के वचन का अन्वेषण करना है उस छिपे हुए खजाने के लिए जिसे शैतान ने बहुत समय से मनुष्य से छिपाए रखने का प्रयत्न किया है। प्रभु कहते हैं, यदि कोई उसकी इच्छा को करना चाहे तो वो शिक्षा के विषय में जान जाएगा। यूहन्ना 7:17 संशोधित संस्करण। परमेश्वर का वचन सत्य और ज्योति है, और वे तुम्हारे पाँव के लिए दीपक है जो तुम्हें परमेश्वर के नगर के फाटकों तक जाने वाले मार्ग में प्रत्येक पग पर मार्गदर्शन करता है। इसी कारण शैतान ने उस मार्ग में बाधा डालने के लिए जो प्रभु के छुड़ाए हुओं के चलने के लिए तैयार किया गया है घोर प्रयास किए हैं। तुम्हें अपनी धारणाएं बाइबल पर नहीं थोपनी है और अपने मतों को वो केंद्र नहीं बनाना है जिसके चारों ओर सत्य परिक्रमा करे। तुम्हें अपनी धारणाएं अनुसंधान के द्वार पर रखकर अलग कर देनी है और दीन विनम्र हृदयों के साथ अपने आप को मसीह में छिपाए हुए गंभीर प्रार्थना के साथ तुम्हें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए कि तुम्हें परमेश्वर की प्रकट की हुई इच्छा को जानना ही है, क्योंकि ये तुम्हारे व्यक्तिगत शाश्वत कल्याण से संबंध रखती है। बाइबल एक मार्गदर्शिका है जिसके द्वारा तुम अनंत जीवन का मार्ग जान सकते हो। तुम्हें सबसे बढ़कर ये अभिलाषा रखनी चाहिए कि तुम प्रभु की इच्छा और उसके मार्गों को जानो। तुम इस उद्देश्य से खोज न करो कि ऐसे शास्त्र वचन मिल जाए जिन्हें तुम घुमा फिराकर अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए उपयोग कर सको, क्योंकि परमेश्वर का वचन घोषित करता है कि ऐसा करना शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर अपने ही विनाश का कारण बनना है। तुम्हें अपने को हर प्रकार के पूर्वाग्रह से रिक्त करना चाहिए और प्रार्थना की भावना में परमेश्वर के वचन के अनुसंधान में आना चाहिए। रिव्यू एंड हेरल्ड 11 सितंबर 1814। विलियम मिलर का जन्म मैसाचुसेट्स के पिट्सफील्ड में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा केवल 18 महीनों की थी, परंतु वे अपने प्रबल पठन अभ्यास के माध्यम से स्वशिक्षित हो गए। उन्होंने बहुत शीघ्र ही लेखन आरंभ किया, कविता रची और डायरी रखी। उनके पठन ने उन्हें ऐसे अविश्वासी लेखकों से परिचित कराया जिन्होंने उन्हें दयावाद की दिशा में प्रभावित किया। अपने 20वें दशक के उत्तरार्ध में वे शांति मजिस्ट्रेट बने और 1812 के युद्ध में लड़े। इस संघर्ष के दौरान हुए कई अनुभवों ने उनके मन को एक व्यक्तिगत परमेश्वर की ओर मोड़ दिया। 1816 तक वे परिवर्तित हो चुके थे और उन्होंने गंभीरता से बाइबल का अध्ययन आरंभ किया। उन्होंने लिखा, पवित्र शास्त्र मेरे लिए आनंद का विषय बन गए और यीशु में मैंने एक मित्र पाया। 65 हिटेटेक तक भविष्यवाणियों के अध्ययन में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यीशु लगभग 1843 में लौटेंगे। 1831 में ऐसा करने के लिए गहन दृढ़ विश्वास और ईश्वरीय प्रबंध के मार्गदर्शन के अंतर्गत उन्होंने छोटे छोटे समूहों में सार्वजनिक रूप से अपने अध्ययन प्रस्तुत करना आरंभ किया। 1829 में प्रमुख संपादक J.V. Hymes से भेंट के बाद बड़े नगरों में विशाल समूहों के समक्ष प्रचार करने का मार्ग खुल गया। यद्यपि बहुतों ने विरोध किया, तथापि उनके उपदेश और उन अन्य लोगों के भी जिन्होंने आगमन का संदेश ग्रहण किया ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यहाँ तक कि 100,000 तक लोगों ने मसीह के शीघ्र आगमन के विश्वास को स्वीकार किया। एलन हार्मन ने मार्च 1850 में मेन के पोर्टलैंड में जब वो 12 वर्ष की थीं उन्हें सुना। उन्होंने बताया, श्री मिलर ने भविष्यवाणियों का ऐसी सटीकता से अनुसरण और विवेचन किया कि श्रोताओं के हृदयों में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने भविष्यवाणी के कालखंडों पर ठहरकर विचार किया और अपने मत को सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए। तब जो लोग तैयार नहीं थे उनके प्रति उनकी गंभीर और शक्तिशाली आह्वान और चेतावनियां भीड़ को मानो मंत्रमुग्ध किए रखती थीं। लाइफ स्केचेस 29th.